رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو رسول خدا کا جشن ہم منا رہے ہیں، لیکن دنیا ناراضگیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، تو اس سے رسول خدا خوش ہوں گے؟ یقیناً ہرگز خوش نہیں ہوں گے۔ جب تک کہ ہم یہ دوریوں کو ختم نہ کریں، جب تک کہ یہ ناراضگیاں دور نہ ہو جائیں، جب تک کہ سارے مسلمان فرقے متحد نہ ہو جائیں، رسول خدا خوش نہیں ہو سکتے۔ رسول خدا کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن کون سا تھا؟ آپ حضرات سے میرا سوال ہے، آپ حضرات بتائیے کہ رسول خدا کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن کون سا تھا؟ کس دن رسول خدا سب سے زیادہ خوش ہوئے؟ رسول خدا کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن اس دن تھا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینے میں موجود دو قبیلے اوس و خزرج کے درمیان جب آپ نے صلح کرا دی، جب آپ نے ان دونوں کے درمیان لڑائی کے ماحول کو ختم کر دیا، اس جھگڑے کا خاتمہ کر دیا اور دونوں کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا، اس دن رسول خدا کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن تھا۔ یعنی رسول خدا مسلمانوں کے اتحاد سے خوش ہوتے ہیں، رسول خدا مسلمانوں کو یکجا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ رسول خدا کی خوشی کا سامان اگر فراہم کرنا ہے تو پورے مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا، پورے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا، تفرقہ اور فتنہ بازی سے دور جانا پڑے گا مسلمانوں کو۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت 213، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کانت ناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین فطرت پر تھے، لیکن جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو خداوند عالم نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ نبیوں کی بعثت اس وقت ہوئی جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، نبی آئے تاکہ اختلاف کو دور کرے۔ کس قسم کا اختلاف تھا؟ زبان کا اختلاف، رنگ کا اختلاف، عرب اور عجم کا اختلاف، نسل کا اختلاف، یہ تمام اختلافات کو دور کرنے اور ان اختلافات کی دیوار کو گرانے کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے، اور اسلام میں ان تمام امتیازات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ رنگ و نسل کی حیثیت ہے اور نہ زبان کی حیثیت ہے۔ اسلام کے پاس اگر صاحب عزت اگر کوئی ہے تو اس کے لیے خود قرآن نے کرائیٹیریا بیان کر دیا ہے کہ اِنَّا اَقْرَبَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتَّقَاكُمْ، تم پہ سب سے زیادہ صاحب عزت خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ باتقوا ہے، جس کے پاس تقوا ہے۔ قرآن نے رنگ، نسل، زبان کی حیثیت کو بالکل صفر کر دیا ہے، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ امیر کو غریب پر فضیلت ہے، مگر تقوی سے، جس کے پاس تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، نیکی ہے، شرافت ہے، وہی مسلمان مکرم ہے خدا کے نزدیک۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے پیغمبروں کی کیا حکمت عملی تھی؟ پیغمبروں نے کس حکمت عملی کے ذریعے سے امتوں میں موجود اختلاف کو دور کیا؟ تو سب سے پہلے پیغمبروں نے ایک خدا کی طرف دعوت دی، عقیدہ توحید کی طرف پیغمبروں نے دعوت دی، عقیدہ توحید کے ذریعے سے پیغمبروں نے تمام اختلافات کا فلاح کما کر دیا۔ عقیدہ توحید ایک ایسی لڑی ہے جس میں تمام مسلمانوں کو پرویا جا سکتا ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کی یکتائی کو تسلیم کرنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ امام طوائی رحمت اللہ علیہ نے دو بہترین تعبیریں پیش کی ہیں، ایک تو ہے کلمہ توحید جو سارے مسلمان اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جب مسلمان کلمہ توحید پر متحد ہو جائے تو ان کے درمیان توحید کلمہ پیدا ہوتا ہے، कलमा तौहीद और तौहीद कलमा, जब मुसलमान कलमा तौहीद पर मुत्तहिद हो जाएंगे तो उनके दरमियान तौहीद कलमा पैदा हो जाएगा। तौहीद कलमा का मतलब यह है कि मुसलमानों की आवाज एक हो जाएगी, उनका अमल एक हो जाएगा, उनकी फिक्र एक हो जाएगी। जब मुसलमान कलमा तौहीद पर जमा हो जाए तो उनके अंदर तौहीद कलमा पैदा हो सकता। तौहीद कलमा यानी उनकी फिक्र, उनके सोचने का ढंग, उनका मौकिफ और उनका अमल एक जैसा हो जाएगा। कलमा तौहीद पर जब जमा हो जाएंगे तो मुसलमानों में तौहीद कलमा ईजाद होगा। वहदत किस बात पर होनी चाहिए, इत्तेहाद किस बात पर होना चाहिए, किस नुक्ते पर इत्तेहाद, यानी मुसलमान ऐसा कौन सा नुक्ता है जिस पर मुसलमान आकर मुत्तहिद हो, तो कुरान मजीद पढ़ करके फरमाता है कि कुल या अहलल किताब तआवनू इला कलिमतिन सिवाय बैनना व बैनकुम, सूरह आल इमरान की 64वीं आयत के, जिसमें रसूल खुदा को हुक्म हो रहा है कि आप कह दीजिए कि अहले किताब इस कलमे की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, और वो ये है कि अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। कुरान मजीद यहां तक कि अहले किताब को दावत दे रहा है, अहले किताब से ये कह रहा है कि तआलो आ जाओ, इला कलमतिन सिवाय बैनना व बैनकुम, उस कलमे पर मुत्तहिद हो जाओ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक है। और वो क्या है, वो कलमा ये है कि अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करें। तो जो कुरान मजीद यहूद और नसारा के साथ इत्तेहाद करने की बात कह रहा है, क्या वो कुरान मजीद मुसलमानों के इत्तेहाद पर कुछ नहीं होगा? जगह जगह इत्तेहाद की दावत दी गई है, जगह जगह मुसलमानों से कहा गया है कि तफरीके का शिकार ना हो जाना, हत्ता उन लोगों की तरह भी ना होना जो तफरीके का, जो तफरीका फैलाते हैं, उनकी मुशाबहत तक इख्तियार नहीं करना जो लोग तफरीका फैलाते हैं। तो जिस कौम का, जिस उम्मत का नबी एक हो, जिसकी कुरान एक हो, जिसका काबा एक हो, इतने तमाम इश्तराकात के बाद फिर इख्तिलाफ की कहां गुंजाइश काफी रह जाती है। अजीजाने मोहतरम, कुरान ने तो यहूद और नसारा के साथ तक इतिहाद करने की बात कही है, तो कुरान मुसलमानों के इतिहाद को दर्जे आला पसंद फरमाता है। और यकीनन कोई अकल रखने वाला झगड़े को पसंद नहीं करता, तनाजों को पसंद नहीं करता, कोई यानी इंसान को खुदावंद आलम ने, उसूल काफी की रिवायत है कि इंसान को खुदावंद आलम ने दो तरह के रसूल भेजे इंसानों के लिए, एक रसूल जाहिरी है जो नबियों की शक्ल में हमारे दरमियान महसूस हुए, और एक रसूल बातिनी है जो अक्ल के उनवान से हमारे वजूद में रख दी गई है। अंबिया का रास्ता यह है, अंबिया का रास्ता भी वहदत का रास्ता है और अक्ल का रास्ता भी वहदत का रास्ता है, यानी इंसान की अकल भी उसे वहदत की तरफ दावत देती है। कोई जिसकी अकल सालिम हो, जो सलीम उल अकल हो, अकल सालिम जिसके पास हो, वो कभी भी झगड़ा फसाद को पसंद नहीं करता। अकल सालिम की अलामत यह है कि अकल सालिम रखने वाला कभी झगड़ा फसाद को पसंद नहीं करता। सैयद जमालुद्दीन अफगानी का नाम आपने सुना होगा, एक जमाने में खुद उसी हैदराबाद में भी वो यहां से नेचरिया नाम का एक तगल्ला निकाला करते थे। वो पूरी दुनिया में सैयद जमालुद्दीन अफगानी ने इत्तेहाद का परचम लहराया, और उन्होंने कहा कि मुसलमान जब तक अंधी तकलीफ का शिकार रहेगा, उसके अंदर अकलानियत वजूद में जब तक नहीं आएगी, उस वक्त तक मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो सकते। इत्तेहाद के लिए अकल से काम लेना जरूरी है, अकल को बरूए कार लाना जरूरी है। अंबिया का रास्ता वहदत का रास्ता है, और अकल का भी रास्ता जाकर वहदत पर खत्म होता है, इत्तेहाद पर खत्म होता है। वहदत करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो इंसान को अपने दुश्मन की शिनाख्त करनी होगी, क्योंकि दुश्मन के साथ वहदत नहीं हो सकती, दुश्मन के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। हमारी मुश्किल यह है कि हम दोस्तों को दुश्मन समझते हैं और दुश्मनों को दोस्त समझते हैं। अमेरिका और इजराइल मुसलमानों के खुले हुए दुश्मन है, लेकिन हम उनको दोस्त समझते हैं। को अपना सरपरस्त समझते हैं, लिहाजा मुसलमानों को अक्ल से काम लेना होगा, अक्ल से काम लेना होगा। जब तक मुसलमान अंबिया का रास्ता ना अपनाएंगे, अंबिया की देशत के मकसद पर गौर नहीं करेंगे और अक्ल सलीम से काम नहीं लेंगे, उस वक्त तक इत्तेहाद का रास्ता हमवार होना मुमकिन नहीं है। लिहाजा मुसलमानों को अक्ल से काम लेना होगा, अक्ल की मदद से मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से मुतहिद होना पड़ेगा। दूसरी जात जो महवरे इत्तेहाद करार पा सकती है कलमे तौहीद के बाद, वो वही जाते गिरामी है जिसकी विलादत का जश्न मनाने के लिए हम आज शहर हैदराबाद के इस मकाम पर जमा हुए हैं। पहला जो महवरे इत्तेहाद है वो खुदा की जात है, अकीदे तौहीद है। इस महवर पर हत्ता यहूदियों और नसरानियों के साथ तक इत्तेहाद किया जा सकता है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका वो है, आपकी नबूवत का इकरार करने वाले अगर मुत्तहिद होना चाहे तो नुक्ता मुश्तरक रसूल खुदा की जात है, इत्तेहाद के लिए मुश्तरक नुक्ता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। वो लोग जो बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को दहशतगर्दी का शिकार बना रहे हैं, उन लोगों के साथ इत्तेहाद नामुमकिन है। वो लोग जो दूसरा को काफिर होने का बतवा दे रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद नामुमकिन है। लिहाजा इत्तेहाद के लिए सबसे पहले इंसान की जान की कीमत की अहमियत का कायल होना पड़ेगा, क्योंकि कुरान मजीद ने साफ अल्फाज में कह दिया है मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतला नास जमीअ, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने उस एक इंसान को कत्ल नहीं किया बल्कि सारी इंसानियत को कत्ल किया था। तो जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, और जो बेसबब कलमा दो मुसलमानों को काफिर करार देते हैं ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद नामुमकिन है। लिहाजा इत्तेहाद के लिए जो मुश्तरक वजूहत है उनमें सबसे पहली मुश्तरक वजह अकीदे तौहीद है। जो भी कलमा दो है, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर उससे इत्तेहाद किया जा सकता है, और जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, अल्लाह के रसूल को आखिरी रसूल अपना मानता है, रसूल खुदा की जात मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद के लिए मुश्तरक नुक्ता है। तो अंबिया की तालीमात और अकल सलीम की तालीमात, इन दोनों को अगर मिलाया जाए और नतीजा निकाला जाए तो नतीजा ये निकलेगा कि अगर मुसलमान किसी नुक्ते पर जमा होना चाहते हैं तो वो नुक्ता मुश्तरक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है। मुसलमान अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को अपना ले तो उनके दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ बाकी नहीं रह सकता। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।